आज है 19 नवंबर दिन शनिवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। नोटबंदी के खिलाफ केरल सरकार ने दिया धरना तो बीजेपी ने कहा,
जिनको संरक्षण देते हैं उनका अनअकाउंटेड मनी डिपॉजिट किया है तो वो अनअकाउंटेड मनी अभी बाहर आ जाएगा, तो ये डर है सीपीएम को, इसलिए सीपीएम इस आंदोलन पर उतरे हैं।
भारत में हैं लोग परेशान तो पड़ोसी राज्य नेपाल में भी लोगों को हो रही हैं दिक्कतें।
भारत नेपाल का जो एक संबंध था रोटी बेटी का, वो एक तरह से देखा जाए तो अभी टूटा हुआ जैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग के पास भी अभी भारत का आईसी पैसा है।
होंगी खेल की खबरें और समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहकारी बैंकों में नोट बदली से इनकार करने के फैसले के खिलाफ कल केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ आरबीआई कार्यालय के सामने एक दिन के धरने पर बैठे। विजयन ने केंद्र सरकार पर नोटबंदी की आड़ में राज्यों में सहकारी बैंकों को तबाह करने का आरोप लगाया। इस धरने में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी भी शामिल हुए। मोदी सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का फैसला लिया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो रूढ़िवादी कट्टर रिपब्लिकन नेताओं को अहम पदों पर काम करने के लिए चुना है। ट्रंप ने कांसास से टी पार्टी मूवमेंट से जुड़े माइक पोम्पेयो को खुफिया एजेंसी CIA के अध्यक्ष पद के लिए चुना है और अलाबामा से सीनेटर जेफ सेशंस को अटॉर्नी जनरल के पद के लिए चुना है। उन्होंने जेफ सेशंस को विश्व स्तर के कानूनी जानकार बताया है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल के अलाबामा शाखा के अध्यक्ष बर्नार्ड सिमिल्टन ने बीबीसी को बताया कि वे अफ्रीकी अमरीकी मूल के लोगों के प्रति जेफ सेशंस की राय को अमरीकी नेताओं के सामने रखना चाहते हैं। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि कन्फर्मेशन कमिटी के पास अलाबामा के अटॉर्नी जनरल के तौर पर सीनेटर सेशंस ने जो किया उन सब की जानकारी हो, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अफ्रीकी अमरीकी मूल के लोगों के लिए सेशंस ने जो नस्लीय और असंवेदनशील टिप्पणी की थी उसके बारे में उन्हें पता चले, और यह भी कि उन्होंने अप्रवास संबंधी बिल और कानूनों का विरोध किया था। हम चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि वो कैसे व्यक्ति हैं। ये थे नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल के अलाबामा शाखा के अध्यक्ष बर्नार्ड सिमिल्टन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। डोनाल्ड ट्रंप अपने खाली पड़े प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्कूल ट्रंप यूनिवर्सिटी से संबंधित मुकदमों का निपटारा करने के लिए $2.5 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए हैं। उन पर कथित तौर पर हजारों छात्रों से झूठ बोलकर पैसे लेने का आरोप था। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने कहा इसे एक चौंकाने वाला फैसला कहा है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वे इस बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे। छात्रों का आरोप था कि उनसे झूठे वादे कर निवेश के राज सीखने के लिए उनसे पाठ्यक्रम पर हजारों डॉलर खर्च करने के लिए राजी किया गया था। ओबामा प्रशासन ने ऊर्जा के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्कटिक महासागर के अलास्का तट पर तेल और गैस के लिए खुदाई की नई परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। नोटबंदी के मुद्दे पर जहां संसद में 3 दिन बहस चली, वहीं लोगों की परेशानी अभी भी जारी है। इधर नोटबंदी के खिलाफ दक्षिणी भारत के राज्य केरल में राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ धरना दिया। इस धरना में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी भी मौजूद थे। दरअसल मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सहकारी बैंकों में नोट बदली से इनकार कर दिया है। बैंक के इस फैसले के खिलाफ केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ आरबीआई कार्यालय के सामने एक दिन के धरने पर बैठे। एक रिपोर्ट के साथ इमरान कुरैशी।
500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद होने से जो संकट पैदा हुआ है उससे केरला में विरोध की एक अलग ही तस्वीर नजर आई है। मामला दरअसल ये है कि केरला में 1550 प्राथमिक सहकारी बैंक हैं जिसमें करीब 1,37,000 करोड़ रुपये जमा हैं, लेकिन इन बैंकों में लोगों को 500 और 1000 रुपयों के नोटों की अदला बदली करने की इजाज़त नहीं है। तो क्या कारण था वाम मोर्चा सरकार को इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना पड़ा? केरला के वित्त मंत्री डॉक्टर थॉमस एजैक ने बीबीसी को बताया, देखिए हमें केंद्र सरकार से आमना सामना करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने केंद्र वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस मामले में ज्ञापन में दरखास्त की थी कि लोगों को प्राथमिक सहकारी बैंकों में नोटों की अदला बदली करने की सहूलियत दी जाए। ये हम इसीलिए की थी क्योंकि इन बैंकों में लाखों लोग खाता बनाए रखे हैं। उसी दिन शाम को यह निर्णय दोबारा आया कि इन बैंकों को सहूलत नहीं देनी चाहिए, यह हमारे संविधानों का अपमान है। इसीलिए हमने विरोध प्रदर्शन किया और नवंबर 22 को विधानसभा का एक विशेष बैठक भी बुलाई है इसी मामले पर चर्चा करने के लिए। ये थे डॉक्टर थॉमस एजैक। दरअसल पहले दो दिन केरला में ये विषय ही नहीं था, लेकिन बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया कि CPM इन बैंकों से काले धन को वैध करने लगी है। बीजेपी के नेता भी मुरलीधरन कहते हैं,
केरल में जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज केरल में फंक्शन कर रहा है सर्विस कोऑपरेटिव बैंक के नाम से, सच में उनको बैंक का शब्द यूज करने का अधिकार नहीं। पिछले 10 साल से रिजर्व बैंक का गाइडलाइंस कंप्लाई करने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, ये लोग उसको विरोध कर रहा था। ये विषय जो आया तो स्वाभाविक रूप से बैंक को जो फैसिलिटीज दिया है वो प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दे नहीं सकता है, ये स्टैंड रिजर्व बैंक ने लिया है। केरल का कोऑपरेटिव सेक्टर CPM के कंट्रोल में रहा है और कोऑपरेटिव सेक्टर में CPM का और CPM जिनको संरक्षण देते हैं उनका अनअकाउंटेड मनी डिपॉजिट किया है, तो वो अनअकाउंटेड मनी अभी बाहर आ जाएगा, खुला हो जाएगा, तो ये डर है CPM को, इसलिए CPM इस आंदोलन पर उतरे हैं।
मुरलीधरन मानते हैं कि ये CPM राजनीति कर रही है इस विषय पर, लेकिन CPM के सीताराम येचुरी कहते हैं,
देखिए इस तरीके की रिएक्शन जो आई वो एक अब सबूत है, जाहिर करती है कि ये काम जो किया गया है ये एक राजनीतिक मकसद से किया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि CPM की कंट्रोल है, उस कंट्रोल को बीजेपी वो खुद चाहते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर देश के अंदर एक बहुत बड़ा भूमिका है उसका, और ये सिर्फ केरल में ही नहीं, जहाँ जहाँ पर कोऑपरेटिव रीढ़ की हड्डी आपके देश के किसानों के लिए, वो सब जो है इसी कोऑपरेटिव बैंक से अपनी ऋण लेते हैं, इंटरेस्ट ब्याज जो होती है बहुत ही कम होता है और इसी के आधार पर वो अपना गुजारा करते हैं और कारोबार भी करते हैं।
कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी इसी मसले पर अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी है और दरखास्त की है कि रिजर्व बैंक के सर्कुलर को वापस लें। दरअसल केरला और कर्नाटका यही कह रही है कि ग्रामीण प्रदेश के लोगों को और खासकर किसानों को ऐसी परिस्थिति में व्यावसायिक बैंकों में खाता खोलने का यह समय नहीं है। अब यह मसला जब सुलझेगा तब सुलझेगा, फिलहाल तो लोगों की दिक्कतें जारी हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
1,500 के पुराने नोट बंद होने की वजह से शहरों कस्बों में रहने वाले आम और खास लोगों के साथ साथ झारखंड के सुदूर गांव में रहने वाले उन आदिवासी परिवारों की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ा दी हैं जिनकी जिंदगी रोज कमाने खाने पर टिकी है। गरीब आदिवासी माड़भात के साथ जंगली साग खाने को विवश हैं। अब इन्हें इसका डर है कि यही हाल रहा तो नमक केरोसिन भी मिलना मुहाल हो जाएगा। झारखंड के ऐसे ही कुछ आदिवासी गांवों का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज सिन्हा ने।
कोटा में खन राशनों नहीं मिला थे, किरासन तेल भी मिलत रहे तो वो भी कमे मिला थे, 2 लीटर देवाई ना।
झारखंड की राजधानी रांची से करीब 50 किलोमीटर दूर डापुर टोला गाँव के आदिवासी महिला सुमन बेदिया गवई लहजे में बता रही हैं कि एक साथ कितनी परेशानियां हैं। दरअसल पहाड़ों जंगलों में बसे कई आदिवासी गांवों में लोगों के चेहरे पर इन दिनों उदासी साफ झलक रही है। बेती गांव के शंभू करमाली समेत कई लोग बताने लगे कि जीने लायक खेती नहीं है, मजदूरी पर जिंदगी टिकी है। सरकारी योजना के तहत तालाब खुदाई के पैसे उन्हें वक्त पर मिल जाते तो शायद इतनी दुर्दशा नहीं होती। सरकारी योजना में कई दिनों तक वे लोग खटते रहे पर न जाने पैसे कहाँ लटक गए। अब नए नोट के इंतजार में भूखे मरने की नौबत है।
मरब अरकर आगे तो कोई की है ये नहीं खे,
मतलब भूखे मरे कर कैसे नौबत है।
काम करो थी तो पैसा नहीं मिला थे, कहे ना कि नया नोटा थे तो भी देवो ना, तो कहाँ से पाई के देवो ना, तो क्या करो भूखे नहीं मरब, तो ना नया नोटा हो थे ना हम इनके पैसा मिला थे, कामों करके खन बैठल बैठल ही क्या करब अब, कोई की मिलवे नहीं घर थे तो कहूँ भी गले कहे ना कि पुराना पैसा मन लेवा तो उठे दुकान में लेवे नहीं घर थी।
बड़ी तादाद में इन गाँवों के आदिवासी मजदूरों का घर परिवार रोज कमाने पर ही टिका है। इसके साथ ही आदिवासी इलाकों में हफ्ते के हाट बाजार से खुदरा सामान खरीदकर घर गृहस्थी चलाने का रिवाज है। हालांकि कुछ होशियार आदिवासी महिलाओं ने हजार दो हजार रुपये बैंक में रखे भी हैं, लेकिन उसे निकालने की जद्दोजहद से वे जूझती रही हैं।
अब नियम कानून जब सरकार निकाला है तो हम लोग का पूरा उतना करेगा तब ना, अब हम लोग आए हैं खेती बाड़ी भी नुकसान हो रहा, धान उन काटने का भी, बकरी बैल है वो सब भी छोड़ के आए हैं, बाल बच्चा का भी दिक्कत हो रहा है, स्कूल उस्कूल जाने का, अब मजदूर भी करने जाते तो हम लोग का पैसा होता, अब हम लोग का पास पैसे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा भी रहने से भी हम लोग भूखे मर रहे हैं।
आदिवासी गाँव का हाल जानने के दौरान ये बातें भी सामने आई कि साहूकार यानी परचून दुकान वाले 500 के पुराने नोट पर उसी शर्त पर सामान देते हैं जब ग्रामीण पूरा सामान खरीदें, वरना 50 रुपये बतौर कमीशन काट लिए जाते हैं।
तो राशन दुकान जाबे तो राशन दुकान वाला कहता हूँ कि समूचा सामान उठा दे तो ठीक हो, अगर कम उठावे तो 50 रुपया 500 में काटबो और 1000 रुपया तो 100 रुपया काटबो।
आखिर पेट भरने के लिए कुदाल फावड़े उठाने ही पड़ेंगे। इस सवाल पर बीसा गांव के खेतीहर मजदूर रमेश लोहरा कहते हैं, अब सरकार का रुपया सुधरे तब तो
पैसा नहीं हाथ लागत है तो का करबे बाहर जाए के, अब कहिया लब सुधरत सरकार का रुपया, तब नहीं हम इन खा पी अब गरीब आदमी।
जाहिर है सुदूर गांव के आदिवासियों को एक साथ कई मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धान कटाई और अगले फसल लगाने का काम तो प्रभावित है ही, वे चाहते हुए भी काम की तलाश में शहरों की ओर रुख नहीं कर पा रहे।
ये थी नीरज सिन्हा की झारखंड से रिपोर्ट। नोटबंदी का असर दूसरे क्षेत्रों की तरह ही पर्यटन पर भी हुआ है, इसके चलते उन इलाकों और शहरों पर खासा प्रभाव पड़ा है जो पूरी तरह पर्यटन पर ही निर्भर हैं। देश की मशहूर पर्यटक नगरी नैनीताल में भी इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के साथ रोहित जोशी।
सुबह सुबह सूरज की रोशनी पहाड़ों का रंग बदल रही है और हल्की से थोड़ी सी ज्यादा ठंड में साफ चमकते पहाड़ अपनी खूबसूरती के रुमान पर हैं। लेकिन नैनीताल की तरफ चढ़ रही इस बस में मेरे अलावा महज 4-5 लोग और हैं। बस सुबह की चाय के लिए दो गांव के जिस ढाबे पर ठहरती है, यहाँ मुझे नींबू की चाय पिलाने के लिए इसके मालिक राजेंद्र सिंह के पास नींबू नहीं है।
कस्टमर आना बंद हो गया है, माल रखना हमने बंद कर दिया, जैसे कि अभी आपने नींबू के लिए बोला तो हम पे नींबू अवेलेबल इन वरना 24 आवर्स रहता है। तो सर नींबू रख के तो हमने दो बार फेंक दिए हैं, तो अब लेके कहाँ से आए, जब कस्टमर आएगा तब जाके लेके आएंगे, फिर जाके लेमन टी बनेगी सर। और अभी तो कुछ नैनीताल में है ही नहीं सर, गिना चुना आपके सामने 4-5 बसें अभी रुकी हैं सर, देखिए इनमें टूरिस्ट आपको दिखाई दे रहा।
नैनीताल में पहुंची बसों से उतरते पर्यटकों को होटल दिलाने वाले ढेरों एजेंट भी पर्यटकों के ना आने से मायूस हैं।
अभी तो ढीला है हमारा काम,
तो नोट बंद होने से ढीला पड़ा या आज?
नहीं नहीं, नोट बंद होने की वजह से लोगों की करेंसी वो नहीं हो पा रही, लाइन लगाने पड़ रही जो बाहर से आता ना।
शहर के साथ अभी अभी जागी नैनी झील में खीम सिंह पर्यटकों के लिए अपनी नाव सजा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से किए गए नोटबंदी के ऐलान से उनके धंधे पर भी फर्क पड़ा है।
फर्क तो पड़ा है, अब कस्टमर आ नहीं रहा है नहीं, आगे पास छुट्टे पैसे नहीं है, कोई नाव में घूमना भी चाहे जब तो
कितना टूरिस्ट आ रहा है आजकल इधर नैनीताल शहर?
कतई नहीं है।
कितने लोगों को आप घुमाते हैं एक दिन में औसतन?
हमारे में घुमाते कभी 3 चक्कर लगाते, कभी 4 चक्कर लगाते हैं। 210 का टिकट है, आधा हमको मिलता है आधा यहाँ इनमें जमा होता है।
तो जब से फैसला लिया है तो फिर आप कितने चक्कर कर पा रहे हैं अभी?
आजकल तो है ही नहीं, कस्टमर ही नहीं है सर।
होटल उद्योग नैनीताल का सबसे अहम उद्योग है। नैनीताल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश शाह कहते हैं कि नोटबंदी की घोषणा से 90% होटल खाली हो गए हैं।
शुरू में 8 तारीख को जितना भी टूरिस्ट था वो काफी परेशानी में रहा, आज की तारीख में इसका असर ऑक्यूपेंसी पे 90% होटल्स खाली हैं। जो फॉरेन टूरिस्ट है उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फॉरेन टूरिस्ट को, क्योंकि करेंसी उनका अपने देश की है और जो करेंसी यहाँ की है वो चल नहीं रही है।
मैं अभी नैनीताल के मॉल रोड में हूँ, शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ टूरिस्ट मुझे दिखाई दिए हैं। आप लोग यहाँ घूम रहे हैं नैनीताल मॉल रोड में, बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है वो रोड। तो आप लोग कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका?
कोलकाता।
कोलकाता
जिष्णु।
तो आप कब इधर आए नैनीताल?
हम लोग 3 दिन हो गया।
ये डिमोनिटाइजेशन का जो फैसला लिया है सरकार ने, आप लोग उसके बाद ही अपने घरों से निकले हैं या?
हम लोग बाहर थे, हरिद्वार में थे।
वो कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है?
प्रॉब्लम यही फेस करना पड़ा कि पुराने करेंसी में जो हुआ एक्सचेंज का बात, ठीक है, तो बैंक में लाइन देना पड़ा 2-3 दिन। जैसे हम लोग इतने जन है तो प्रॉब्लम तो हुआ है, 3-4 घंटे हम लोग लाइन में खड़े थे, उसके बाद जाके एक्सचेंज हुआ है, तो ऐसा दिक्कत हुआ। और यहाँ पे एटीएम में भी जैसे 2500 मिल रहा था परसों तक, वो भी लिमिट कर दिया अभी 2000 का, तो ये सब तो प्रॉब्लम हो रहा है।
आपका क्या नाम है?
शिवानी।
कितनी तकलीफ है झेलनी पड़ी?
नहीं, थोड़ी बहुत तो झेलने पड़ती है, लेकिन है ग्रुप में तो बस जो भी कठिनाई हो हम लोग झेल रहे हैं एक साथ।
नोटबंदी की कमी से नैनीताल के पूरे व्यापार पर असर हुआ है। व्यापार संघ के अध्यक्ष मारुति साह कहते हैं,
पहाड़ की जो इकोनॉमी है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो हमारे पास जो रोजगार के दिन हैं वो अमूमन बहुत कम होते हैं, और उसी में अगर डांका पड़ जाए। यहाँ पे एक एग्जांपल की मैं बात करता हूँ कि मार्केट में हमें पता है बहुत से चोर हैं, ये पुलिस भी उन्हें नहीं पकड़ पाई और कानून उन्हें सजा भी नहीं दे पाया, तो वहां से सरकार का आदेश आता है कि एक काम करो कि सबों को 100-100 कोड़े मार दो। अब जब ये 100 कोड़े पड़े तो सरकार कहती है, खुशी की बात यह है कि जो चोर थे ना उसको भी कोड़े पड़ गए।
नैनीताल शहर पर्यटन पर निर्भर है, यहाँ का तकरीबन हर एक रोजगार पर्यटन की गतिविधियों से जुड़ा है। नोटबंदी ने घूमने के शौकीनों को अपने अपने शहरों में बैंकों या एटीएम की कतारों में ला खड़ा किया है, और नैनीताल जैसी सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनकी बेसब्री से राह देख रही है। रोहित जोशी, BBC नैनीताल।
1500 के पुराने भारतीय नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले का असर नेपाल पर भी पड़ा है। नेपाल में बैंकों का अनुमान है कि उनके पास लगभग 3 करोड़ रुपए हैं। वहीं नेपाली कारोबारियों और आम लोगों के पास इससे कहीं अधिक भारतीय मुद्रा होने का अनुमान है, जो पुराने नोट बंद होने की वजह से किसी काम के नहीं रह गए हैं। भारत की सीमा से सटे बीरगंज में BBC नेपाली सेवा की सहयोगी माधुरी महतो ने कुछ स्थानीय लोगों से बात की।
जी, अभी हम लोग इंडिया के बॉर्डर के पास नेपाल का बीरगंज के ही मार्केट में है। हम लोग माया स्थान महावीर स्थान के पास है अभी, और मेरे आगे बहुत ही यहाँ पे नेपाली जनता लोग हैं, जिसको 500 और 1000 जो बंद हुआ है इंडिया में, उसकी वजह से नेपाल में भी बहुत ही असर पड़ा है।
जितेश गुप्ता है मेरा नाम, और मैं कपड़ा व्यापारी हूँ। आइस इंडिया में बंद होने से यहाँ पे भी बहुत समस्या आ चुका है। हम लोग कपड़ा किनने जा रहे हैं इंडिया में, वहाँ पर चल नहीं रहा है, दिक्कत हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें?
विशाल कुमार गुप्ता
जी, आपको ये 500 और 1000 रुपए बंद होने की वजह से कैसा समस्या हुआ है?
ये 500 और 1000 का नोट बंद होने से हम लोग को भी बहुत सारा कठिनाई आ रही है, और इसमें क्या है कि जो पहले जो 500 और 1000 का था, जो हम लोग मतलब माल लाने जाते थे मुजफ्फरपुर, और उसके बाद हम लोग पैकेट में भी लेकर जा सकते थे, और बंद होने के चलते क्या हुआ है कि अगर 100-100 का नोट लेकर जाते हैं तो उसमें छीनने और मतलब चोरी होने का बहुत सारा डर हम लोग के अंदर समा रहता है। बॉर्डर से सटे एरिया में है बीरगंज में, तो हम लोग के पास तो वहाँ का खाता नहीं है, और खाता नहीं है तो उसमें मोदी जी क्या नियम लगाए हुए हैं कि जो भी मतलब पैसा मतलब है आपके पास, तो उसको आप खाता में डाल सकते हैं, खाता से मतलब निकाल सकते हैं, और जिसके पास खाता ना हो उसके पास उससे तो बहुत ही कठिनाई होगी ना।
हाल ही में बीरगंज में एक सगाई हुआ था, झारखंड की लड़की थी और बीरगंज के लड़के थे, तो उनका सगाई जो हुआ था, तो लड़की की ओर से जो आए थे यहाँ पे सगाई करने के लिए, उन लोगों ने पंडित जी को भी चेक ही दिया और लड़के को शगुन में भी चेक ही दिया, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं था। सगाई का डेट आ गया था लेकिन उन लोगों के पास एक भी पैसा नहीं था, 500 और 1000 का नोट चल नहीं रहा था, वो लोग लेके नेपाल में नहीं आ सकते थे। अभी हमारे पास और भी एक है, यहाँ के बीरगंज की स्थानीय है, आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ।
ये पैसे की वजह से कैसा समस्या?
मोदी जी जो भी काम किए हैं वो सराहनीय काम है, पर अभी हम लोग बीरगंज वासी को, क्योंकि हम लोग बॉर्डर से सटे हुए होने के कारण से भारत नेपाल का जो एक संबंध था रोटी बेटी का, वो एक तरह से देखा जाए तो अभी टूटा हुआ जैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग के पास भी अभी भारत का IC पैसा है, मेरा भारत में खाता भी नहीं है और नेपाल में हम साट भी नहीं सकते हैं। इस वजह से हम बहुत बड़ी समस्या में पड़े हुए। इसका नेपाल सरकार को और भारत सरकार को कुछ सजेशन निकालना चाहिए ताकि बॉर्डर के पास जो बैठे लोग हैं उनको राहत मिले।
हम लोग बीरगंज वासी से बात कर रहे थे, जो भारतीय रक्सौल बाजार है उससे लगभग बहुत ही करीब है ये बीरगंज और ये नेपाल में पड़ता है। बीरगंज वासी लोग के जैसे और भी बॉर्डर एरिया में जो नेपाल के शहर है वो नेपाल के शहर में बहुत ही समस्या हो रहा है। माधुरी महतो, बीरगंज, नेपाल।
भारत में नोटबंदी से नेपाल में भी लोग हैं परेशान, लेकिन क्या नेपाल ने मुद्रा के मामले में निर्भरता को लेकर इस पूरे घटनाक्रम से कोई सबक सीखा है? जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बीबीसी नेपाली सेवा के संवाददाता सुरेंद्र फोयाल से बात की।
नेपाल और भारत का बहुत नजदीकी व्यापारिक व्यवसायिक भी संबंध है, इसकी वजह से बहुत सीमा भी खुला है, इसकी वजह से आवाज जावाज ज्यादा है, बिजनेस व्यापार भी व्यक्तिगत तौर पे भी ज्यादा है और संस्थागत तौर पे सरकारी तौर पे भी बहुत काफी चलता है। भारतीय रुपया नेपाल में भी बहुत लोग रखते हैं, यहाँ भी कुछ कारोबार भारत से जुड़े हुए कारोबार भारतीय रुपया में होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है, मगर अभी तो संकट है। नेपाली व्यापारियों का कहना है कि नेपाल में भारतीय रुपया 500 और 1000 दर के नोट करीब 10 अरब हिसाब में है, वो व्यापारियों का कहना है। आधिकारिक तौर पे सरकार का कहना है कि करीब 3 करोड़ रुपया भारतीय नोट 500 और 1000 के है, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया है अभी।
सुरेंद्र, ये बताइए कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंध रहे हैं और कई मौकों पर नेपाल ने भारत का पुरजोर विरोध किया है, हम देखते आए हैं इस तरह के मामले कई हुए हैं। ये जो 1000 और 500 के नोट बंद हुए हैं, इसे लेकर नेपाल में किसी तरह का गुस्सा भी है क्या?
थोड़ा सा है, ज्यादा तो नहीं है। पूर्व गवर्नर कह रहे थे थोड़ी देर पहले, हम एक समाचार पढ़ रहे थे, उसकी वो नोट का बंद करना और नाका का बंद करना वो दोनों अच्छी बात नहीं है, इस तरह से थोड़ा बहुत आक्रोश भी सुनाई दे रहा है। व्यवहारिक तौर पे ये समस्या जिस तरह से भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में समस्या समाधान करने के लिए काफी कोशिशें कर रही है, उसी तरह से नेपाल में भी भारतीय रुपया से लेकर जुड़ी हुई जितने भी चिंताएं हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उसको समाधान करने के लिए कूटनीतिक तौर पे प्रोएक्टिव होना और सक्रिय होना, कुछ अगले हफ्ते ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना बहुत जरूरी है।
जब इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा नेपाल के लोगों के पास, बैंकों के पास, कारोबारियों के पास है, क्या इस पूरे घटनाक्रम से कहीं कुछ लोगों में सरकार के स्तर पर कोई संदेश गया हो, कोई सबक मिला हो इस तरह का कि भाई भारतीय मुद्रा पर निर्भरता कम की जाए?
शायद कुछ लेसन सबक तो बिल्कुल सीख गए हैं बहुत लोग कि ये बड़ा दर का भारतीय नोट का भंडारण करना, उसका कलेक्शन करना, ये बहुत घातक हो सकता है। अब ये तो लेसन, ये पाठ तो सब नेपाली को मिल गया। अब
नेपाल सरकार के लिए निर्णय लेना जरूरी है। थे नेपाली सेवा के संवाददाता सुरेंद्र फोयाल।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या 1000 और 500 के पुराने नोट बंद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक जुआ खेला है? क्या इस फैसले का असर अगले विधानसभा चुनावों के नतीजों पर पड़ेगा? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या उसे मोदी सरकार के फैसले की राजनीतिक कीमत चुकानी होगी? यही है इस हफ्ते बीबीसी इंडिया बोल का विषय। क्या है इस विषय पर आपके विचार? शनिवार 19 नवंबर को शाम 7:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त डायल करें इन टोल फ्री नंबरों पर 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। मानसी दाश समाचार पत्रों के साथ स्टूडियो आ चुकी है। मानसी,
खबरों की शुरुआत करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर से। आज कई अखबारों ने इंदिरा गांधी की तस्वीर छापी है। उनकी 100वीं जयंती पर कांग्रेस उन्हें याद कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस, दी स्टेट्समैन, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में मैं बड़े बड़े विज्ञापन देख रही हूं। नोटबंदी की घोषणा को आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन न तो बैंकों के सामने कतार कम होती दिख रही है, न अखबारों में इससे जुड़ी खबरों का सिलसिला कम हो रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने पहले पन्ने पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार की खबर छापी है। कोर्ट ने कल सरकार से कहा कि देश में पैसे की कमी से निपटने के लिए सरकार को और काम करना होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि हालात गंभीर हैं और अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो दंगे होने की आशंका है। कोर्ट ने पूछा है कि जब लोग नोटबंदी को लेकर परेशान हैं तो सरकार ने पुराने नोट बदलने की सीमा अचानक 4000 से घटाकर 2000 क्यों कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटबंदी से प्रभावित लोग यदि कोर्ट का रुख करते हैं तो यह उनका अधिकार है। इस संबंध में दायर सभी याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने निजी अस्पतालों को चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए पैसे लेने का आदेश दिया है ताकि मरीजों को अधिक परेशानी न झेलनी पड़े। यह खबर भी हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में छपी है। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी एक खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जजों की भर्ती के लिए कॉलेजियम के सुझाए 43 नामों पर केंद्र सरकार को दोबारा विचार करने के लिए कहा है। कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में जजों की भर्ती के लिए 77 नामों की लिस्ट सरकार के पास भेजी थी, जिसमें से 43 नामों को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। एक खबर आपको बता दूं पायोनियर से, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आपने सुना होगा। उन्हें साल 2016 का सुमित्रा चरतराम अवार्ड मिला है।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानसी दास। और अब एक विशेष सूचना।
हम हैं बेखौफ,
हम हैं दमदार,
हम हैं क्रिएटिव,
हम हैं असरदार,
हम दिखाते नए रास्ते,
सुनाते कहानियाँ,
हम हैं 100 विमेन।
खास कार्यक्रम और बहस के जरिए सुनाएंगे हम दुनिया भर की औरतों के संघर्ष और सफलता की कहानियाँ।
BBC Special 100 Women। 21 नवंबर सोमवार से हम लाएंगे विशेष साक्षात्कार, रिपोर्ट और बहुत कुछ ऐसा जो आपने इससे पहले देखा सुना नहीं होगा।
और अब बात खेलों की। विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में कल भारत की पहली पारी 455 रनों पर समाप्त हो गई। इसके बाद कल इंग्लैंड ने अपने 5 विकेट 103 रन पर खो दिए। एक रिपोर्ट के साथ आदेश कुमार गुप्त।
भारत ने विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली। कल भारत की पहली पारी 455 रनों पर समाप्त हुई और इसके बाद जब खेल समाप्त हुआ तब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट खोकर 103 रन था। यानी इंग्लैंड अभी भी भारत से 352 रन पीछे है और इसके 5 विकेट बाकी हैं। कल इंग्लैंड के जो रूट ही भारतीय गेंदबाजों का कुछ जमकर सामना कर सके। रूट ने 98 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से 53 रन बनाए। वो आर अश्विन की गेंद पर उमेश यादव के हाथों कैच हुए। उनके अलावा बाकी बल्लेबाजों का ये हाल रहा कि कप्तान एलिस्टेयर कुक केवल 2 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर बोल्ड हो गए। हसीब हमीद 13 रन बनाकर रन आउट हुए। इसके बाद बेन डुकेट केवल 5 रन बनाकर आर अश्विन की गेंद पर बोल्ड हुए तो मोइन अली जो 21 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन ही बना सके थे वो अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे जयंत यादव की गेंद पर LBW हो गए। स्टंप के समय बेन स्टोक्स 12 हैं और विकेट कीपर जॉनी बेयरस्टो भी 12 रन बनाकर नाबाद थे। भारत के मोहम्मद शमी ने 15 रन देकर 1, आर अश्विन ने 20 रन देकर 2 और जयंत यादव ने 11 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। कल इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 4 विकेट पर 317 रन से आगे शुरू की। कप्तान विराट कोहली 167, आर अश्विन 58 और जयंत यादव 35 रन बनाकर पेविलियन लौटे और भारत की पहली पारी 455 रन पर समाप्त हुई। कल के दिन के खेल के बाद आर अश्विन ने स्वीकार किया कि उन्हें बल्लेबाजी रास आ रही है।
मैं अपनी बल्लेबाजी का आनंद ले रहा हूं। पिछले 4-5 महीनों में मैंने भी रनों से टीम में योगदान दिया। मैंने पिछले इंग्लैंड दौरे पर भी अच्छी बल्लेबाजी की थी जिसका मनोवैज्ञानिक लाभ मुझे मिला। मैंने कुछ बातों पर ध्यान दिया जो वेस्ट इंडीज में दिखा।
आर अश्विन के शब्द। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने 62 रन देकर 3 और मोइन अली ने भी 98 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। पहले तो बल्लेबाजी करते हुए आर अश्विन ने 58 रन बनाकर अपने टेस्ट करियर का 8वां अर्धशतक जमाया और उसके बाद इंग्लैंड के 2 विकेट झटक कर अपनी गेंदबाजी का दमखम भी दिखाया। आज का खेल तय करेगा कि इंग्लैंड फॉलो ऑन बचा पाता है या नहीं।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात स्थिति के खत्म होने की घोषणा की है। हालांकि संगठन के एक प्रवक्ता ने कहा है कि बच्चों के दिमाग में संक्रमण फैलाने वाला यह वायरस अभी भी लगभग 75 देशों में मौजूद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहकारी बैंकों में नोटबंदी के इनकार करने के फैसले के खिलाफ कल केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ आरबीआई कार्यालय के सामने एक दिन के धरने पर बैठे। अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो रूढ़िवादी कट्टर रिपब्लिकन नेताओं को अहम पदों पर काम करने के लिए चुना है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी मानसी दास। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे विश्व भारती में दोबारा 8 बजे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।